वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैं अलग होना चाहती हूँ तो मुझे अपनी बेटी को उसी के पास छोड़ देना होगा।
उसने कभी भी मुझे अपनी कमाई का इस्तेमाल करने, अपने परिवार की मदद करने के लिए नहीं दिया, बल्कि वह अपने परिवार को गुप्त तरीके से पैसे भेजता रहा।
मैं सही थी, तब भी वह मेरी हमेशा आलोचना करता रहता था, लेकिन आखिर में मुझे उससे माफ़ी मांगनी ही पड़ती थी, क्योंकि अगर मैं सहमत ना होती या उनके खिलाफ जाती तो बात और भी बिगड़ सकती थी।
मुझे लगा कि वो हमेशा चेक करता रहता था कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मेरी परवाह करता था। मुझे नहीं पता था कि वह बलपूर्वक नियंत्रण था।
नमस्ते और नॉलेज इज पावर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जो अप्रवासी महिला सहायता सेवा इमिग्रेंट वुमेन सपोर्ट सर्विस IWSS की पेशकश है। हम अप्रवासी और शरणागत बैकग्राउंड वाली महिलाओं और बच्चों के लिए घरेलू हिंसा और यौन हिंसा के लिए विशेष सेवा हैं। हम इस पूरे पॉडकास्ट में घरेलू हिंसा और यौन हिंसा पर चर्चा करेंगे। अगर ये हद से ज़्यादा मुश्किल हो जाए तो आप किसी भी समय रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हैं। आपको किसी दोस्त या किसी भी ऐसे व्यक्ति से संपर्क करने की ज़रूरत पड़ सकती है जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप नीचे सूचीबद्ध सहायता सेवाओं में से किसी से संपर्क करना चाह सकते हैं। इन सेवाओं के बारे में जानकारी इस पॉडकास्ट के आखिरी में भी दी जाएगी। हम जेगरा और तुर्बल लोगों को मिंजिन ब्रिस्बेन के पारंपरिक संरक्षण के स्वरूप में स्वीकार करते हुए शुरुआत करना चाहेंगे, जिस भूमि पर हमें काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अतीत, वर्तमान और उभरते हुए फर्स्ट नेशन के सभी बुजुर्गों के लिए अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। यह पॉडकास्ट शरणार्थी और अप्रवासी बैकग्राउंड वाली महिलाओं द्वारा बनाया गया था, जो बलपूर्वक नियंत्रण झेल चुकी हैं। हम उनकी ताकत और बुद्धिमत्ता को स्वीकार करते हैं और उन्हें हमारे और अभी सुन रहे लोगों के साथ अपनी कहानियां शेयर करने के लिए धन्यवाद देते हैं। इस पॉडकास्ट पर हम IWSS के कर्मचारियों और महिलाओं से सुनेंगे, जो बलपूर्वक नियंत्रण के अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करेंगे। हम इन कहानियों को इस बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शेयर कर रहे हैं कि बलपूर्वक नियंत्रण क्या होता है और यह कैसा दिखता है। अपनी खुद की जानकारियों और IWSS के साथ अपने अनुभव शेयर करने वाले दूसरे लोगों से प्राप्त जानकारियां शेयर करने के लिए रोज हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस अहम विषय पर आप बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद रोज। तो बलपूर्वक नियंत्रण होता क्या है?
बलपूर्वक नियंत्रण निरंतर अपमानजनक व्यवहार का एक पैटर्न है, न कि केवल एक बार की घटना जो आपको असुरक्षित या डर महसूस करा सकती है। हालांकि हर किसी को डर महसूस नहीं होता, कम से कम शुरुआती चरणों में। इसमें शारीरिक और गैर शारीरिक दोनों प्रकार का दुर्व्यवहार शामिल हो सकता है, और बलपूर्वक नियंत्रण लगभग हमेशा तब होता है जब कोई व्यक्ति घरेलू और पारिवारिक हिंसा का अनुभव कर रहा हो, और अक्सर रिश्ता खत्म होने के बाद भी जारी रह सकता है। बलपूर्वक नियंत्रण किसी अंतरंग या रोमांटिक साथी या परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी किया जा सकता है।
मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो महसूस कर रही हूँ वह बलपूर्वक नियंत्रण है?
यह संकेत है कि आपको नियंत्रित कोई करना चाहता है, या आपसे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करना चाहता है, या आपको बुरा महसूस कराना चाहता है, या आप में छोटी छोटी बातें उसे लग सकती हैं। जब किसी साथी या परिवार के सदस्य का व्यवहार एक पैटर्न बन जाता है, बार बार लंबे समय तक चलता है, और आपको चिंतित, शर्मिंदा या अपने बारे में अनिश्चित महसूस कराता है, तो आप बलपूर्वक नियंत्रण का अनुभव कर सकते हैं। कुछ संदेहों में आत्मसंदेह पैदा करने के लिए बार बार आलोचना करना और अपमान करना, या जैसे कि मुझे चर्च जाने या अपने धर्म और सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करने से रोकना, या चालाकी से काम निकालने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, या फिर मुझे यौन संबंध बनाने या यौन चीज़ें करने के लिए मजबूर करना जो मैं नहीं करना चाहती, मुझे जो चाहिए उसे नियंत्रित करना, जैसे कि यहाँ तक कि दवाई, खाना, स्वास्थ्य देखभाल तक जैसी चीज़ों की तरफ पहुँच, या फिर मेरा फ़ोन चेक करना, मुझे मॉनिटर करते रहना, खुद को या अपने प्रियजनों को चोट पहुँचाने की धमकी देना, और मैं जो भी कुछ करूँ उसे नियंत्रित करने की कोशिश करना। हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है। हालांकि आम बात यह है कि बलपूर्वक नियंत्रण आपको स्थिति को बदलने में लाचार महसूस कराता है। अगर आप निश्चित नहीं हैं कि आप जो अनुभव कर रहे हैं वह बलपूर्वक नियंत्रण है, तो कृपया सहायता सेवा से बातचीत करें।
यह सब शेयर करने के लिए धन्यवाद रोज। हम जानते हैं कि कभी कभी इस बारे में बात करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम इसकी सराहना करेंगे कि आप हमें और दूसरी महिलाओं के अनुभव के बारे में बताएं। क्या आप इस बारे में और ज़्यादा जानकारी शेयर करना चाहेंगी कि कोई व्यक्ति कैसा महसूस कर सकता है जो बलपूर्वक नियंत्रण का अनुभव कर रहा होता है?
मैं जाल में जैसा फंसने जैसा महसूस कर रही थी और निकल नहीं पा रही थी। ऐसा नहीं है कि दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि मैं निकल सकती हूँ। उसने मुझे ऐसे महसूस कराया कि मेरे साथ कुछ गलत है, और मुझे लगने लगा कि यह दुर्व्यवहार मेरी गलती थी, क्योंकि वह मुझसे बार बार कहता था कि मैं दोषी हूँ। उसके लगातार नीचा दिखाने से मुझे खुद पर और अपनी योग्यता पर शक होने लगा। दूसरों ने शेयर किया है कि उन्हें डर लगता था या उन्हें अपनी पसंद चुनने की कोई आज़ादी नहीं थी, लेकिन हर किसी का अनुभव एक जैसा नहीं होता।
जैसा कि आपने कहा, हर कोई एक ही तरह से बलपूर्वक नियंत्रण का अनुभव नहीं करता। जिन महिलाओं से आपने बात की, क्या उन्होंने बलपूर्वक नियंत्रण के कुछ समान अनुभव शेयर किए हैं आपसे?
हाँ, दूसरी महिलाओं के साथ जो मेरी बातचीत हुई है उसमें बलपूर्वक नियंत्रण के कुछ समान रूप थे। इनमें कुछ चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि मेरे साथ सभी इवेंट्स में शामिल होकर मैंने किसके साथ समय बिताया इसको नियंत्रित करना, परिवार और दोस्तों से मिलने से पहले या बाद में मुझे दोषी महसूस कराना, मेरे परिवार और दोस्तों के प्रति अशिष्ट या आक्रामक व्यवहार करना, और वो हमसे मिलना नहीं चाहते या मैं कभी कभी उनका पक्ष लेना चाहती थी, इन वजहों से मैं अलग अलग महसूस करने लगी। यह मुझे बताना कि मैं किसके साथ समय बिताना चाहूँगी, किसके साथ नहीं। इन सब से मुझे महसूस हुआ कि जैसे मुझे परिवार या दोस्तों से मिलने के लिए भी इजाज़त मांगनी पड़ेगी। मुझे पूछने में भी घबराहट महसूस होती थी और मैं कभी भी उसके परिवार के बारे में कोई गलत बात नहीं कर सकती थी। मुझे ऐसे सेक्स या यौन कृत्यों में शामिल करने के लिए मजबूर करना जो मैं नहीं करना चाहती थी, और धमकियों का इस्तेमाल करना, मना करने पर मुझे दोषी महसूस कराना या शारीरिक हिंसा करना, मुझे बाहर निकाल देने और बच्चों को साथ रखने की धमकी देना, और बच्चों के सामने मेरे बारे में बुरी बातें करना, अलग होने के साथ बाद भी मेरे साथ छेड़छाड़ करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करना, या बच्चों से ये कहना कि उनको बताएं कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे फ़ोन, ईमेल, सोशल मीडिया के ज़रिए मेरी बातचीत चेक करना और उनको मॉनिटर करना, मेरा बैग चेक करना, यहाँ तक कि रसीदें तक चेक करना, मेरी बातचीत सुनना, घर के अंदर कैमरा लगे कह के लगा देना कि ये दूसरों कारणों के लिए, लेकिन मैं जानती थी कि वो मुझे देख रहा था हमेशा, पुलिस में रिपोर्ट करने की धमकियाँ देना, मुझे जान से मारने की धमकियाँ देना, शर्मिंदा करने की धमकियाँ देना, अगर मैं नहीं चाहती कि वह चाहता था तो मुझे चोट पहुँचाने की धमकियाँ देना, कानूनी समय सीमा में देरी करके कानूनी प्रणालियों का इस्तेमाल करना, अदालत में मेरे खिलाफ मेरे धर्म का इस्तेमाल करना, मुझ पर हमला करने के लिए खुद का प्रतिनिधित्व करना, मुझे उकसाना और फिर उसके अपमानजनक व्यवहार पर मेरी प्रतिक्रिया का वीडियो बनाना, और यह कहने के लिए इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना कि वह मुझसे दुर्व्यवहार का अनुभव कर रहा था। यह कुछ महिलाओं के लिए खास तौर से मुश्किल था जिन्होंने पुलिस से बात करते समय दुभाषियों तक भी पहुंच ना होने का अनुभव भी शेयर किया है।
परिवार नियोजन या फाइनेंस के बारे में क्या आप कुछ उदाहरण शेयर करना चाहेंगी?
हाँ, ज़रूर। कुछ उदाहरण जो शामिल किए गए उनमें हैं, जैसे कि पूरे धन को अपने नाम पर ही नियंत्रित कर लेना, अपने और बच्चों के लिए कोई चीज़ें खरीदने के लिए या अपने परिवार वालों को पैसे भेजने के लिए हमें उसकी मंजूरी की ज़रूरत होना, लेकिन इस पर भी सवाल करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होना कि उसने इन पैसों का इस्तेमाल कैसे किया। इसमें यह भी शामिल है कि क्या उसने अपने परिवार को विदेश में पैसे भेजे थे। यह कहकर मुझे काम करने से रोक देना कि वह मुझसे प्यार करता है या मेरी परिवार करता है, लेकिन फिर मुझे जीने तक के लिए भी पैसे नहीं देना। बच्चा पैदा करने के लिए इलाज कराने के लिए मुझ पर दबाव डालकर बच्चा पैदा करने या ना करने के विकल्प को नियंत्रित करना, यह निर्देश देना कि हम कब परिवार शुरू करेंगे, या मुझे यह कहकर मुझे बच्चा पैदा करने से रोकना कि मैं एक बुरी माँ बनूंगी।
और क्या आप मुझे कुछ उदाहरण बता सकती हैं जो उन महिलाओं के लिए विशिष्ट हैं जो शरणार्थी और प्रवासी रूप में ऑस्ट्रेलिया आई हैं?
हाँ ज़रूर, दूसरे देशों की महिलाओं ने समान आबादी के साथ बहुत सारे समान अनुभव साझा किए और साथ ही कुछ अनोखे अनुभव भी साझा किए, जैसे कि कई चीज़ों के लिए बार बार मुझे नीचा दिखाना या मेरा अपमान करना। इसमें मेरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, मेरा गृह देश या मैं कैसे अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण करती हूँ, मुझे मेरी मातृभाषा में बात करने से रोकना या मुझे अंग्रेजी सीखने से रोकना शामिल है। बार बार मेरी सांस्कृतिक या आध्यात्मिक प्रथाओं को अपमानित करना जो मुझे आस्था से दूर करती हैं, इसे मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना या मेरी आस्था पर सवाल उठाना कि मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ। अपमानजनक रिश्ते में बने रहने के लिए शर्मिंदगी के बजाय परिवार की ओर से दोषी ठहराए जाना और दबाव डालना, बच्चों को छीनने के लिए और अपने फायदे के लिए ऑस्ट्रेलियाई और विदेशी प्रणालियों का इस्तेमाल करने की धमकी देना, या मुझे यह विश्वास दिलाना कि ऑस्ट्रेलिया में मेरे पास कोई अधिकार नहीं है और यह कहकर अपमानजनक व्यवहार के लिए बहाना बनाना कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही होता है, मुझे निर्वासित करना या मेरे वीज़ा को कैंसिल करने की धमकियाँ देना, मुझे मेरे बच्चों के बिना निर्वासित करने की धमकियाँ देना, मुझे उन कागज़ों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करना जिन्हें मैं अंग्रेज़ी में नहीं समझती, उसके साथ रहने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना और फिर जब हम एक बार वहाँ चले जाएं तो मुझे परिवार और दोस्तों से संपर्क करने के लिए रोक देना और मुझे जाने से रोकने के लिए मेरे डॉक्यूमेंट्स छीन लेना।
ये सभी उदाहरण वाकई में उन रणनीतियों की विस्तृत श्रृंखला को उजागर करते हैं जिनका इस्तेमाल इस प्रकार की हिंसा के अपराधी उन लोगों को अलग थलग करने, डराने, धमकाने और अपमानित करने के लिए करते हैं जिनसे उन्हें प्यार करना चाहिए। आप दूसरों को क्या बताना चाहेंगे जो बलपूर्वक नियंत्रण का अनुभव कर रहे हैं?
घरेलू और पारिवारिक हिंसा सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं होती। दूसरे लोगों के लिए आप बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हैं। ये आपकी गलती नहीं है, आप में कोई गलती नहीं है और आप सुरक्षित रहने और सम्मान के साथ व्यवहार किए जाने के लिए पूरे हकदार हैं। अपनी स्वाभाविक बुद्धि पर भरोसा रखें। आप जो अनुभव कर रहे हैं वह वाकई ही सच है, ये सिर्फ आपके दिमागी तौर पर नहीं है और आप उत्तेजित या अंतर्जित नहीं हो रहे हैं। किसी से बात करने के लिए संपर्क करें। घरेलू और पारिवारिक हिंसा का अनुभव करने वाले सभी लोगों के लिए सहायता उपलब्ध है। सिर्फ इसलिए कि आप किसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर पर उनका अधिकार है। आपको सेक्स या ऐसी किसी भी चीज़ को नहीं कहने का अधिकार है जो आप नहीं करना चाहते।
अगर मैं बलपूर्वक नियंत्रण का अनुभव कर रही हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ?
ऑस्ट्रेलिया में बलपूर्वक नियंत्रण बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता और उसके लिए सहायता उपलब्ध है।
धन्यवाद रोज। बलपूर्वक नियंत्रण बर्दाश्त नहीं किया जाता और आमतौर पर मौजूदा घरेलू और पारिवारिक हिंसा कानून में से मान्यता दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास के राज्य और क्षेत्र फिलहाल न्याय के रिस्पॉन्स को मजबूत करने और अपमानजनक बर्ताव के इस पैटर्न के बारे में खतरों को पहचानने के लिए कानून में सुधार के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ क्वींसलैंड में संसद के जरिए एक नया कानून भी पारित किया गया है जो 2025 में लागू होगा, जिससे इस कर्तव्य की कठिन गंभीरता को प्रतिबंधित करने के लिए 14 साल तक की जेल की अधिकतम सजा के साथ बलपूर्वक नियंत्रण को अपना दंडनीय जुर्म बना दिया जाएगा। यह बदलाव इसलिए है क्योंकि बलपूर्वक नियंत्रण और मानव हत्या के बीच एक संबंध है।
IWSS के बारे में और ज़्यादा जानकारी और दूसरी भाषाओं में जानकारी हमारी वेबसाइट IWSS.org.au पर उपलब्ध है, या वैकल्पिक तौर पर कृपया हमारे प्रशिक्षित विशेषज्ञ कर्मचारी से बात करने के लिए 07-3846-3490 पर सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 से शाम 4 बजे तक IWSS टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आप खतरे में हैं तो आप पुलिस को 000 पर कॉल कर सकते हैं और अपने दुभाषीय से बात करने के लिए भी आप पूछ सकते हैं। अगर आप या आपके कोई परिचित घरेलू, पारिवारिक और या यौन हिंसा से प्रभावित हैं तो कृपया 1800-737-732 पर या फिर 1-800-RESPECT से संकल्प करें। अगर आपको दुभाषीय की ज़रूरत है तो आप अनुवाद और दुभाषीय सेवा विच इज़ ऑल्सो नोन एज TIS नेशनल को 131-450 पर कॉल कर सकते हैं और उन्हें निःशुल्क कॉल करने के लिए कह सकते हैं। आपको एक दुभाषी को रखने का पूरा अधिकार प्राप्त है। यह पॉडकास्ट उन प्रवासी महिलाओं सहायता सेवा उन उदार महिलाओं जिन्होंने अपनी कहानियों को हमारे साथ शेयर किया और क्वींसलैंड सरकार द्वारा क्वींसलैंड महिला पैनल में सक्रिय भूमिका निभाए जाने की वजह से मुमकिन हो पाया है, पॉडकास्ट द स्ट्रीट टीम के द्वारा बनाया गया है।